ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उससे कैसे ऊपर उठा जाए, इसका ज्ञान भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको दे रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने भगवान के मुख द्वारा सुना कि भगवान की विशेष कृपा कोई कैसे प्राप्त कर सकता है। प्रसादम अधि गच्छति, राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरण आत्मवश्यैर् विधि आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग और द्वेष इस संसार के ये ऐसे पहलू हैं कि जब तक कोई बद्ध अवस्था में है तब तक इन दो द्वंद्वों से वो मुक्त नहीं हो पाएगा। जैसे कि एक सिक्के की दो बाजू होते हैं, ऐसा कोई सिक्का आपने देखा नहीं होगा कि दोनों बाजू एक ही हैं, ये केवल एक बाजू में कुछ है दूसरे बाजू में कुछ नहीं। तो उसी प्रकार से जो राग और द्वेष, अटैचमेंट एंड एवर्जन जिसकी चर्चा हमने की थी, जब तक हमारी ये भौतिक इच्छाएं पनप रही हैं तो राग और द्वेष ये एक जुड़वा भाई की तरह है। हालांकि जुड़वा भाई दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग इच्छाएं दोनों की होती हैं और अलग अलग कार्यकलाप दोनों के होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो राग और द्वेष है ये इस भौतिक संसार में इस जुड़वा भाइयों की तरह है कि दोनों जो हैं एक समान हैं हमें इस संसार में बाधित करने के लिए। परंतु यदि इनसे ऊपर उठना है तो भगवान ने जो पिछले श्लोक में कहा कि उनकी कृपा जब तक प्राप्त नहीं होगी, कि जब तक वो हमें इन द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठाएंगे उनकी कृपा से, तब तक हम इससे ऊपर नहीं उठ सकते अपने आप से। तो आज के श्लोक में अब उसी को आगे बढ़ाते हुए, पिछला श्लोक अंत हुआ था प्रसाद से, यदि आपको ध्यान है, प्रसादम अधिगच्छति, और आज का श्लोक शुरू हुआ है प्रसाद से। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो श्लोक में भगवान कह रहे हैं आशु, जो तीसरी लाइन में है शब्द, ही आशु बनता है ह्याशु। आशु का अर्थ होता है संस्कृत में जल्द, फास्ट, वेरी फास्ट। तो भगवान यहां पे कह रहे हैं कि बहुत जल्द क्या होता है, बुद्धि उस व्यक्ति पर्य अवतिष्ठते, कि वो स्थिर हो जाती है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। और सर्व दुखानाम हानि, ये इस प्रकार से समझना होगा कि सभी दुखों का हनन, ये दो चीजें कब उस व्यक्ति को प्राप्त होती है, जब प्रसादे, जब उसे प्रसाद प्राप्त होता है ना। अनुभव किया हमने भी, इसलिए इस्कॉन में एक ये कहा गया है कि चाहे व्यक्ति के कितने भी डाउट हो, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना, प्रसाद की प्लेट आती है तो उसके सारे डाउट दूर हो जाते हैं, रहते ही नहीं कोई डाउट। और कहते हैं ऑल कॉन्ट्रडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड ओवर द प्लेट ऑफ प्रसाद। लेकिन यहां पर हमने पिछली बार जो चर्चा की थी, प्रसाद के कई अर्थ होते हैं। प्रसाद का एक और अर्थ है भगवान की कृपा। तो जिसको भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर, सभी दुखों का हनन हो जाता है। अस्य उपजायते, क्या उपज होता है फिर? जब उसका हनन हो गया, सभी दुखों का हनन हो गया, तो क्या पैदा हुआ? प्रसन्न चेतसो याशु, जल्दी जल्दी। क्या भगवान कह रहे हैं कि कोई डिले नहीं होता है, आशु बहुत जल्दी प्रसन्न चित्त वो व्यक्ति हो जाता है। और जब वो स्थिति को प्राप्त करता है तो उसकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त करती है। तो सरल है अब ये संस्कृत समझना, तब इसका पूरा अनुवाद भी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले श्लोक से इसका क्या संबंध रहा? तो पिछले श्लोक में भगवत कृपा प्राप्त करने का तरीका भगवान ने बताया, और इस श्लोक में भगवत कृपा प्राप्त करने का परिणाम। तो भगवान बहुत सिस्टमेटिकली जा रहे हैं भगवत गीता में, सब कुछ एकदम जैसे अर्जुन को स्पून फीडिंग करा रहे कि देखो बेटा अर्जुन, ये तरीका है भगवत कृपा प्राप्त करने का। और कौन है वो भगवत, कौन है वो भगवान? मैं स्वयं। और उसका परिणाम क्या होगा वो भी तुरंत वहां पर बता रहे हैं, जो कि अर्जुन को वो हुआ परिणाम उनका। तो आज के श्लोक का अनुवाद पूरा इस प्रकार से है, भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्ति पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। प्रसन्न चेतसो का अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने सैटिस्फैक्शन किया है, संतुष्ट। ऐसी संतुष्टि उसके सर्व प्रकार के दुखों को नष्ट कर उसके बुद्धि को शीघ्र ही आशु, शीघ्र ही स्थिर कर देती है। तो ये आज के श्लोक का पूरा अनुवाद है। तो अगर हम इस श्लोक का विश्लेषण करें तो भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति, तो आज का श्लोक भगवान ने इस प्रकार से शुरू किया है कि जिसको भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है, प्रसाद है। पिछले श्लोक को यदि किसने अपने जीवन में उतार लिया तो उसके भगवत गीता प्राप्त, भगवत कृपा प्राप्त हो चुकी है, ये समझ लिया। और वो पिछले श्लोक में भगवत कृपा प्राप्त कैसे हो गई? राग द्वेष से ऊपर जो उठ गया वो। तो अब भगवान कह रहे हैं कि पूर्ण संतुष्ट वो हो जाता है, प्रसन्न चित्त वो हो जाता है। और पूर्ण संतुष्टि का कनेक्शन भगवान ने स्थिर बुद्धि से किया है, और प्रसन्न चित्त का कनेक्शन सर्व दुख निवारण से। तो हम ये श्लोक का पूरा डाइसेक्ट करके अब और अंदर जा रहे हैं कि किस कौन से शब्द का कनेक्शन कौन से शब्द के साथ है। तो ये बात सरल है समझना कि व्यक्ति की बुद्धि स्थिर कब नहीं होती? जब वो संतुष्ट नहीं रहता। अ पर्सन हुज इंटेलिजेंस इज अनस्टेडी कैन बी अंडरस्टूड दैट दैट पर्सन इज डिससैटिस्फाइड, और अ डिससैटिस्फाइड पर्सन इंटेलिजेंस विल ऑलवेज बी अनस्टेडी। और प्रसन्न चित्त व्यक्ति, ये लक्षण है, उसका चित्त प्रसन्न है, ये लक्षण है कि उसके जो दुख हैं उसका निवारण हो रहा। जैसे एक बार शीला प्रभुपाद अमेरिका में एक मॉर्निंग वॉक पर थे, तो एक बहुत मोटा ताजा व्यक्ति, तो प्रभुपाद ने जब उनको देखा तो प्रभुपाद ने तुरंत कहा कि ही इज वेरी हैप्पी। तो सारे शिष्य कि केवल वो मोटा इसलिए हैप्पी? तो प्रभुपाद एक तरीके से समझाए कि क्योंकि वो खुश है इसलिए वो अच्छी से खा पी रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जो मोटे ताजे हैं बहुत खुश रहते हैं हर समय, कि ये सूत्र है कि यदि हमें खुश रहना है तो मोटे ताजे हो जाए। नहीं नहीं, वो भी बहुत दुखी रहते हैं अपने आप में। लेकिन प्रभुपाद वहां पर ये बताना चाहते थे कि जो व्यक्ति वो बहुत प्रसन्न चित रहेगा तो उसका कनेक्शन प्रभुपाद किससे कर रहे थे कि वो फिर बहुत प्रसन्न चित भाव में जो भी कुछ जीवन की आधार का आधारशिला है उसको ग्रहण अच्छे से करेगा। यहां तक कि सांस लेना, जल ग्रहण करना, अन्न खाना, जो साधारण क्रियाएं हैं, कोई व्यक्ति यदि प्रसन्न चित्त है तो उन साधारण क्रियाओं को भी वो अपने आप को उसी में स्वस्थ बना सकता है। और यदि कोई प्रसन्न चित्त नहीं है तो प्रभुपाद कह रहे थे चाहे उसके पास कितना भी अच्छा खाना मिले उसे, चाहे वो कितने भी अच्छे हवा पानी में रहे, यदि चित्त प्रसन्न नहीं है, जैसे हमने पिछली बार वो अकबर बीरबल की कहानी ली थी कि कौन सा सबसे मधुर स्वीट हो सकता है, तो मधुर वचन। बीरबल ने क्या कहा कि चाहे कितना भी अच्छा पकवान आप किसी को खिलाओ लेकिन मधुर वचन नहीं बोलो तो कितना भी अच्छा पकवान हो वो कड़वे से कड़वा लग जाएगा। तो इस संदर्भ में प्रसन्न चित्त जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वर्ड, ये की वर्ड है आज के श्लोक का, सैटिस्फैक्शन, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद कहे कि द मोस्ट रेयर ऑफ ऑल स्पीशीज इज ह्यूमन बीइंग्स, द मोस्ट रेयर ऑफ ऑल स्पीशीज इज द ह्यूमन स्पीशीज। Rarer among the human species are those who come in contact with Supreme Personality of Godhead, Krishna. They are even more rare to become Krishna conscious. Even more rare in that is one who can stay in Krishna consciousness. Contact mein to aate hain bahut log aur fir chale bhi jate hain. To stay in Krishna consciousness is even more rare. But the rarest, Prabhupada said, is the one who remains happy in Krishna consciousness. Ye sabse rare hai. Durlab, durlabham, durlabataram. Sabse zyada rarest, one who can remain happy in Krishna consciousness. Prasanna chitta. Halaki Prabhupada ne kaha, chant and be happy. Chant Hare Krishna and be happy. लेकिन हम उसको किस तरीके से समझेंगे कि जब हम जो हरे कृष्णा जप करने के सारे विधि विधान हैं और विशेष रूप से जिस चेतना में हमें भगवान का नाम स्मरण करना है, नाम कीर्तन करना है, जब उसे हम ठीक प्रकार से करेंगे तो भगवान जो यहाँ पर कहें प्रसादे सर्व दुखानाम और फिर प्रसन्न चित्त, वो संभव है। तो आज हम शुरुआत करेंगे बद्ध जीव के जो दो ध्येय हैं, जहां से शुरुआत होती है सर्व दुखानाम। हानि नहीं, अभी तक हनन उसका नहीं, शुरुआत उपज सर्व दुख की कहां से, तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति और आत्यंतिक सुख प्राप्ति। घबराइए मत, समझाऊंगा। आत्यंतिक का अर्थ है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ मिजरी। निवृत्ति का अर्थ है सेसेशन, एब्सोल्यूट सेसेशन ऑफ मिजरी एंड एब्सोल्यूट एक्वायरमेंट ऑफ प्लेजर, आत्यंतिक सुख प्राप्ति। इसलिए जितने अलग अलग प्रकार, ये 84 लाख जो योनियां हैं, इनमें आप देखिए कि ये हर एक लेवल पर बढ़ते रहते हैं ये दो चीजें करते हुए। अब कोई पशु के जीवन में है तो पशु के जीवन में उसकी जो दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति का लेवल हमारी दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लेवल में बहुत जमीन आसमान का अंतर होगा। अब जैसे देखिए बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें आप पूछे कि आत्यंतिक सुख क्या है प्राप्ति आपके लिए, इतना बड़ा लॉन और उससे ज्यादा माता पिता अंदर बैठे हैं, है कि नहीं, तो उनके लिए वो, उनके एज के लिए वो आत्यंतिक सुख प्राप्ति होगी और दुख निवृत्ति उनका कि स्कूल खुल रहे हैं, एग्जाम आ रहा है, वेडनेसडे प्रोग्राम खत्म हो रहा है, मतलब अभी वापस घर जाना पड़ेगा, माता पिता बाहर आएंगे। तो हम देखें कि हर एक योनि में और विशेष रूप से हम मनुष्यों में ये इसका परिवर्तन चलता रहता है, और हर क्षण ये जो राग द्वेष दुख निवृत्ति सुख प्राप्ति कलयुग में विशेष रूप से हर क्षण हमारे मन में ये बैटल हम खेलते रहते हैं, इसका द्वंद्व चलता रहता है कि कैसे दुख की निवृत्ति करें, कैसे सुख की प्राप्ति करें, कैसे सुख की प्राप्ति करें, कैसे दुख की निवृत्ति करें। तो हाल ही में एक मैं उदाहरण ले रहा था जो कि बहुत ही उपयुक्त है आज के इस पॉइंट के ऊपर, तो फिर से हम इसको लेंगे, थोड़ा अच्छी से समझेंगे ग्राफिकली इस उदाहरण को। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एक चूहा जो कि पिंजड़े में बंद है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट एक वैज्ञानिक ने इस चूहे के ऊपर किया, पिंजड़े में बंद इस चूहे को उसने किया क्या कि एक तरफ करंट लगाया और दूसरी तरफ उसे खाने के लिए पूड़ी। तो अब एक तरफ जब वो जाता जहां पर करंट था तो उसे मुंह मारता तो करंट लगता, तुरंत वो दूसरी ओर जाता वहां पर मुंह मारता तो उसको पूड़ी मिलती। तो उसके दिमाग में अब ये पूरा प्रोग्राम हो गया। देखिए हमारे भी दिमाग में इस प्रकार, ये मत समझे कि ये खाली चूहे की कहानी है, हम लोग देख रहे हैं बेचारा चूहा पकड़ा हुआ पिंजड़े के अंदर, यहां वहां करंट पूड़ी इसके अंदर भाग रहा है, नहीं नहीं ये हम सब की कहानी है। तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहता था इसलिए चूहे का उदाहरण लिया, लेकिन इस भ्रम में भी आपको नहीं रखना चाहता कि ये मत समझिएगा कि केवल चूहे की कहानी है। तो अब ये चूहे के अंदर ये पूरा प्रोग्राम उसने नोट डाउन कर लिया, क्या कि मैं जब बाईं ओर जाता हूं तो वहां पर मुझे करंट लगता है, और मैं जब दाईं ओर जाता हूं तो वहां मुझे पुड़ी मिलती है। ठीक है, तो एक हफ्ता वो वहां पर नहीं जा रहा, कहां पे जहां पे करंट लग रहा था वहां पर नहीं, केवल पुड़ी की ओर, पुड़ी की ओर, पुड़ी की ओर जा रहा। फिर ये जो वैज्ञानिक था इनका दिमाग उल्टा ही चलता है, तो इसने उल्टा कर दिया, अभी यहां पे पूड़ी रख दी, यहां पे करंट एक हफ्ते बाद। तो अब ये जहां पे पूड़ी मिलती थी वहां मुंह मारने गया तो करंट लग रहा है अभी, और यहां पे पूड़ी मिल रही है। तो अब उसको वो वापस से वो प्रोग्राम चेंज करने में टाइम लगा, कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है। तो फिर उसने अपना बहुत टाइम लगाया और प्रोग्राम पूरा चेंज किया, पुरानी फाइल्स पर डिलीट की, अभी नए फाइल से ऐड की, तभी यहां पे उसको पुड़ी मिल रही है बाईं ओर और दाईं ओर करंट लग रहा है, और इसने फिर चेंज कर दिया एक हफ्ते बाद। तो अब ये पूरा कंफ्यूज हो गया, अब ये दिन भर यहां से वहां डर के मारे, कहां पे पुड़ी है, कहां पे करंट है, कहां पे पुड़ी, कहां पे करंट है। और इस दौरान इस वैज्ञानिक ने उस पिंजड़े का द्वार खोल दिया, लेकिन इसको कोई भान नहीं कि पिंजड़े का द्वार खुला है, ये केवल पुड़ी करंट, पुड़ी करंट, पुड़ी करंट में लगा हुआ है। इसलिए कई बार हम भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति आजकल 21वीं सदी में इतने व्यस्त रहते हैं, हाँ, कि कहाँ करंट लग रहा है वहां से दूर भागे, कहाँ पुड़ी मिल रही है। तो फिर पुड़ी करंट के दौरान जब हम बुलाते हैं कि सत्संग का कार्यक्रम है, आइए मंदिर में आइए, दर्शन कीजिए, तो फिर वो पूरी करंट में इतना बिजी हैं कि वो सत्संग का कार्यक्रम का इनविटेशन बोले कि वहां पर कौन सा पूरी करंट रहेगा वो पहले बताओ, कि अगर हम हमारे करंट से बच के, इसलिए कई बार संडे फिस्ट में हम पूरी देते कि अगर यहां की पूड़ी से वहां का करंट बचे तो वही। भगवान ने कहा कि हां क्योंकि आत्यंतिक सुख प्राप्त व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर हो सकता है, और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति जब तक कि वो इस आत्मा के स्तर पर नहीं आता तब तक नहीं होगी। तो ये इस चूहे की व्यथा, तो पिछले श्लोक से इस चूहे की कथा से ये संबंध है कि अटैचमेंट और एवर्जन, कि उसका जो राग या उसका अटैचमेंट, वो चाहे जो भी कुछ बदलाव होता रहे, वो वैज्ञानिक ने कभी पुड़ी यहां रख दी, कभी करंट वहां रख दिया, जो भी बदलाव वो करता गया वैज्ञानिक, लेकिन ये जो चूहा था, ये चूहा उसने अपना राग बनाए रखा कि जहां पर भी मुझे वो पुड़ी मिलेगी वो मेरा राग रहेगा, और जहां पर भी वो करंट मुझे लगेगा वो मेरा द्वेष या एवर्जन। तो पिछले श्लोक पर ये जो उदाहरण है बहुत उपयुक्त सिद्ध होता है, इसलिए फिर अंत में त्रस्त होकर जब वो कृष्ण भावनामृत को ज्वाइन करता है तो साइन बोर्ड लाता है, वैज्ञानिक को दिखा, नो मोर एक्सपेरिमेंट्स। वो वैज्ञानिक कौन है? वो माया देवी है। तो बोलता है अभी मेरे को कोई मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करना, क्योंकि मैं सारे पूड़ी और करंट से ऊपर उठना चाहता हूं, और मैं वो जो असली प्रसाद है भगवान श्री कृष्ण का वो मैं ग्रहण करना चाहता हूं। तो अब आज के श्लोक में भगवान ने सैटिस्फैक्शन या प्रसन्न चित इसके विषय में चर्चा की है। तो इसका ठीक विपरीत क्या है? लोभ, या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ग्रीड। ये जो हमारे हृदय के अनर्थ हैं, इन अनर्थों में से सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली या प्रबल जो अनर्थ हैं वो है लोभ। क्योंकि लोभ ये एक ऐसा अनर्थ है कि उसे जितना ज्यादा आप उसे खिलाओ, यहां पे खिला रहे कितना, उसे जितना ज्यादा खिलाओ उतना ज्यादा वो शक्तिशाली होता है। मतलब कि जो कोई बाकी हमारे अंदर, जैसे किसी को कोई क्रोध एक अनर्थ है, तो क्रोध जब वो उतार दे किसी के ऊपर, हाँ, बोलकर या कुछ कर कर, थप्पड़ मार कर, जो भी, जैसे माँ बाप कई बार बच्चों पर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, तो जब क्रोधित हो जाते हैं तो अपना क्रोध उतार देते हैं, एक दो तमाचा लगा दिया, और उसके बाद में फिर उनका क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन लोभ ये ऐसा है अनर्थ कि अगर कोई व्यक्ति उस लोभ को संतुष्ट करने की उस भ्रांत धारणा में कुछ और प्रयास करता रहता है, तो वो जो एक ऐसा राक्षस है वो और ज्यादा प्रबल, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है और वो और शक्तिशाली होता जाता है। तो आज हम थोड़ा इस ग्रीड का जो ये प्रॉब्लम है जीव के अंदर, इसकी चर्चा करेंगे। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से हुआ, एक्सेसिवली डिजायरस ऑफ एक्वायरिंग और पोजेसिंग, स्पेशली विशिंग टू पोजेस मोर देन व्हाट वन नीड्स और डिजर्व्स। ये जो लास्ट लाइन है सबसे महत्वपूर्ण है, विशिंग टू पोजेस मोर देन व्हाट वन नीड्स एंड ऑल्सो व्हाट वन डिजर्व्स। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, एक सुंदर कोट उनका ग्रीड के ऊपर, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ देयर इज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड, बट देयर इज नॉट इनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। कि जितने जीव हैं ये पूरी पृथ्वी प्रकृति सबको उनकी जरूरतें देने के लिए सक्षम है, लेकिन अगर एक इंसान वो लोभी हो जाए, ग्रीडी हो जाए, तो ये पूरी पृथ्वी उसके लिए कम पड़ेगी, पूरी सृष्टि उसके लिए कम पड़ेगी। इसलिए तो हम लोग यहां पर आए। तो ये शुरुआत में इसका अनुवाद है या फिर इसका डेफिनेशन, मुझे हाल ही में किसी ने ईमेल में भेजा था तो मुझे अच्छा लगा। आई वर्क फॉर मनी, फॉर लॉयल्टी हायर अ डॉग। आजकल ये प्रवृत्ति हो रही है कि भाई तुम्हें यदि मुझसे काम कराना है, मैं तुम्हारे लिए जो भी वफादारी निभाऊंगा, लॉयल्टी किसे कहते हैं, वफादारी निभाऊंगा, लेकिन वफादारी कब तक निभती रहेगी, जब तक कि पेमेंट मेरा पेचेक मिलता रहेगा, जब तक कि मेरी सैलरी मिलती रहेगी, तब तक कितनी वफादारी निभाते रहते हैं। तो यहां पर एक कुत्ते का उदाहरण दिया है कि कई बार हम देखते हैं कि जो कुत्ते हैं उनके विषय में कहा गया है कि हाँ उनमें अगर एक गुण है जो सबसे प्रमुख गुण एक कुत्ते का, वो है वफादारी। और हमारे आचार्य जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने अपने भजन में भी लिखा है कि हे कृष्ण, मैं और कुछ नहीं पशु आपका कुत्ता बनना चाहता हूं। और कई हमारे आचार्यों ने भगवान के प्रति वफादारी निभाने के लिए इस कुत्ते का उदाहरण दिया, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर वफादारी इस हद तक होती है कि यदि वो उसका मालिक उसे कुछ न भी दे, फिर भी वो अपने मालिक को त्यागता नहीं। और ऐसे ऐसे उदाहरण हैं इस पशु के कि जिसने मालिक गद्दार हो गया, लेकिन फिर भी उसने उस मालिक की जान बचाई। ऐसे बहुत सी कथाएं हैं ये इस पशु की। तो इसलिए जब हम अपने जीवन में देखें कि क्या मैं अपने जीवन में किसे महत्व ज्यादा दे रहा हूं, कि मेरी वफादारी या मेरे अंदर जो इंसान है उसको, या फिर जो लोभ मुझे परेशान कर रहा है। तो इसके संदर्भ में एक सुंदर कथा है, द स्टोरी ऑफ द 99 क्लब। एक राजा था जो कि अपने राज्य के कार्यभार से बहुत परेशान था, वेरी ट्रबल्ड बिकॉज ऑफ हिज किंगली अफेयर्स। अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स, जूझता हुआ, परेशान। तो ये राजा के पास हर एक महीने, 1.5 महीने में इसका नाई आया करता था, जो भी इसकी सर की मालिश करने के लिए, उसको हेयर कट देने के लिए, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए, तो इसका नाई आया करता था। और ये नाई हर समय प्रसन्न चेतसो, हर समय प्रसन्न चित रहता ये नाई। तो राजा को धीरे धीरे ईर्ष्या होने लगी कि मैं राजा हूं, मैं इससे ज्यादा दुखी हूं, ये नाई है मेरे राज्य का और ये मुझसे ज्यादा सुखी कैसे दिखता है। अब नाई जो होते हैं उनकी आदत होती है कि वो जो भी बाल काटते समय बहुत बातें करते हैं। एक कारण ये है कि अगले को पता ना लगे कि कितने बाल काट दिए, या कुछ गड़बड़ कर दिया तो बातचीत में उसको घुमा देते हैं। तो ये नाई क्या उसके जीवन में चल रहा है, सब कुछ एकदम प्रसन्न चित्त। तो राजा अब द्वेष करने लगा नाई से। तो राजा ने मंत्री को बुलाया, मंत्री को कहा कि मुझे तो नाई बनना है। मंत्री, नाई बनना है? क्या हुआ, क्या आपको अचानक? अरे वो नाई कितना संतुष्ट और कितना प्रसन्न चित्त रहता है। तो अब मंत्री ने सोचा कि भाई हमारे राजा अगर नाई बन जाएंगे तो राज्य का क्या होगा। तो मंत्री ने अब देखिए क्या सोचा कि वो नाई के वजह से हमारे राजा पथभ्रष्ट हो रहे हैं, तो नाई को असंतुष्ट कर दो। तो मंत्री ने राजा से कहा कि वो अभी तक आपको खुश क्यों लग रहा है, क्योंकि उसने अपना क्लब ज्वाइन नहीं किया। तो राजा पूछा, कौन सा क्लब? 99 क्लब। ये क्या होता है, 99 क्लब क्या होता है? तो फिर मंत्री ने कहा, आप मुझे एक थैली में 99 गोल्ड कॉइन्स दो, 99 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दो उस नाई को देने के लिए, या आप अपने हाथ से एक पुरस्कार के रूप में उस नाई को 99 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में दो। तो बाल काटने के 99 स्वर्ण मुद्राएं, मतलब बाल काटने के नहीं, ये आपके अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको लेके, ठीक है। तो फिर मतलब मैं अपने हाथ से दूं तो फिर क्या कैसा कैसा लगे? नहीं, उसके घर के सामने हम जाकर रखेंगे और उसको बताएंगे नहीं। तो उसके घर के सामने अगले दिन एक थैली में 99 स्वर्ण मुद्रा है। वो सुबह सुबह अपना दरवाजा खोलता है, उसको पोटली मिलती है, अंदर लेके आता है। सबसे पहले क्या कर, जैसे कोई है ना स्वर्ण मुद्राएं किसी को मिलती है, सबसे पहले क्या करता है? काउंट करता है। तो पोटली उल्टा करके, दरवाजा बंद करके अपनी पत्नी को भी बुलाता है, तुम इधर बैठ जाओ, तो आदत तुम लो, काउंट कर रहे हैं। काउंट किया, एक बार काउंट किया, कितना किया? 99। कुछ तो गड़बड़ है, वापस से काउंटिंग। 99, तीसरी बार वापस। पत्नी, तुमको काउंटिंग नहीं आती? सारे मेरे को तो इधर। अरे राउंड फिगर होना चाहिए, क्या है 99? तो 99 बार काउंट कर लिया, 100 बार काउंट कर लिया, लेकिन वो स्वर्ण मुद्राएं निकली 99 थी। तो उसके मन में अब ये एक है ना, वो टाचनी, वो चुभ रही थी। टाचनी बोलते ना, टाचनी चुभ रही थी कि ये 100 क्यों नहीं है, राउंड फिगर होना चाहिए था। तो अब जब उसके बाद वो राजा के पास आया बाल काटने, तो चुपचाप बाल काट रहा है, कोई साइलेंट मोड में, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। तो राजा पूछा, क्या भाई आज कुछ बोल नहीं रहे? नहीं, आज ऐसे ही, थोड़ा चिंता में हूं। क्या चिंता है? कि वो उसको 100 कैसे करूंगा अभी, वो उसकी चिंता। तो राजा अब मंत्री की ओर देखता है, मंत्री कह रहा है, देखो इसके 3-4 पेपर क्लियर हो गए हैं 99 क्लब में भर्ती होने के, अभी इंडक्शन हो रहा है इसका, पूरा रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एक एक एग्जाम पास कर रहा है अभी। तो फिर 6 महीने, 8 महीने, 1 साल हो गया, और क्योंकि उसको बाद में पार्ट टाइम जॉब ले लिया, ओवर टाइम, ये वो, अलग अलग जहाँ पे बाल काटना शुरू किया, हरे कृष्णा मंदिर में पहुंच गया, वहां पे ज्यादा मिलेगा। लेकिन लेकिन कई कई बार हरे कृष्णा मंदिर में नाइयों की कमी नहीं होती, अंदर ही हमारे सब इनबिल्ट ही रहते हैं। जैसे हमारे एक नासिक यात्रा में हम लोग राम घाट पर थे, तो वहां पर हम लोग खुद ही एक दूसरे की शेविंग कर रहे थे। तो वहां पर राम घाट के जितने नाई थे चिल्लाने लगे, ब्राह्मणों की खुद शेविंग करते हो, किस प्रकार के ब्राह्मण हो तुम, ये तो हमारा काम है, ये नाइयों का काम है ये सब करना। लेकिन हम तो ना, हम विप्रो न च नरपतिर, और सब क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद सब माहिर हो जाते हैं हम लोग सब शेविंग करने में। तो हमको ना तो किसी नाई की जरूरत पड़ती है, ना 99 क्लब में ज्वाइन करने की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर ये अब ये नाई इतने अथक प्रयास कर रहा है वो एक स्वर्ण मुद्रा कमाने के लिए। तो ये इसका तात्पर्य है कि कई बार हमारे पास जो कुछ होता है, इसके पास 99 स्वर्ण मुद्राएं थी, लेकिन इसका जीवन असंतुष्ट रहने लगा वो एक स्वर्ण मुद्रा को अर्जित करने के लिए। तो यहां से ये जो भौतिक प्रकृति है, ये हमारे अंदर लोभ पैदा करती है। कि एक है कि जो मेरे पास नहीं है अभी, उसे हासिल करना, और एक है जो दूसरों के पास है और मेरे पास नहीं है, वो मुझे हासिल करना है। और हम दोनों के पास है, लेकिन उसके पास मुझसे थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मुझे और अर्जित करना है। और वो अगर मुझसे ज्यादा ले ले, तो उससे पहले मैं पहुंच जाऊं फिनिशिंग लाइन, तो इसके लिए मैं और अथक प्रयास करूंगा। तो ये है ये 99 क्लब की स्टोरी। बहुत सी स्टोरियां हैं, एक और स्टोरी है, अ क्यूरियस लव स्टोरी। तो ये घटना हुई, ये वास्तविक घटना हुई थी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में। तो एक बहुत बड़ा सर्जन डॉक्टर, जो कि हर दिन वो कम से कम $10,000 कमाता था हर दिन, बहुत ही विख्यात वहां का सर्जन न्यूयॉर्क का। तो तो जब उसका विवाह हुआ तो उसने अपने पत्नी को कह दिया कि भाई देखो, तुम जो कुछ मांगना है मुझसे, जितना पैसा चाहिए, जितनी सुख सुविधा चाहिए, मुझसे मांग लो, मेरा समय मत मांगना। टाइम इज मनी। क्योंकि वो जो समय बिताता जो भी कुछ वो सर्जरी करने में, तो उसके दिन का वो कम से कम $10,000 कमाता था। तो उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि सब कुछ, जितने बंगले, जितनी गाड़ियां, जितने नौकर चाकर, जो भी सुख सुविधा तुमको चाहिए, सब कुछ प्रदान करूंगा, मेरे से टाइम मत मांगना। तब हुआ क्या कि शुरुआत में तो उसको सब कुछ मिला, लेकिन अब खाली चीजों के साथ थोड़ी कोई इंसान रह पाएगा। तो अब उसका प्रेम हो गया एक, वो जहां जिम में जाया करती थी उधर न्यूयॉर्क में, तो जिम इंस्ट्रक्टर के साथ उसका प्रेम हो गया। तो ये जिम इंस्ट्रक्टर है, इसने इस महिला को कहा कि मैं तुम्हारे साथ ये प्रेम का संबंध तभी रखूंगा जब हमारे बीच में पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा, अरे मेरे को कोई जरूरत नहीं है पैसों की, भर भर के पैसे कोई जरूरत नहीं, मुझे खाली प्रेम चाहिए, मुझे स्नेह चाहिए किसी व्यक्ति का। तब वो रोज उससे मिलने जाती। अब हुआ क्या कि वो मिलकर जल्दी जल्दी वापस अपने घर आती, तो एक दिन बहुत वर्षा हो रही थी, तो जो मैनहट्टन ब्रिज है वो वर्षा के कारण बंद हो गया, क्योंकि वो हडसन रिवर में फ्लड्स आ गया, तो वो ब्रिज बंद हो गया, तो गाड़ी नहीं ले जा पा रही थी। और उस दिन उसने पैसे नहीं लाए थे अपने साथ, तो वो जो वहां पे वो फेरिस चलती है, तो उसके पास, वो बोटमैन के पास वो गई, उसको बोली कि मेरे को यहां से वहां लेके जाओ, मैं तुम्हें वहां जाने के बाद पैसे दे दूंगी अपने घर। नहीं नहीं, पैसे पहले, यहां बाढ़ हो रही, पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं, पैसे पहले। तो ये अब अपने, ये जो जिम इंस्ट्रक्टर था, ट्रेनर, इसके पास गई, बोले कि मुझे $500 दे दो, मैं कल तुमको लाके, पैसे का लेन देन नहीं, पहले ही बोला था। तो इतनी बारिश हो रही है, इसको वापस जाना है, ये पैसे दे नहीं रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, वो जो नाविक है वो नाव चला नहीं रहा क्योंकि उसको उसी समय पैसे चाहिए। इतनी परेशान, अब कहां प्रसन्न चित रहेगा, इतनी परेशान। तो उसने गाड़ी ली, वो ब्रिज के ऊपर जो वार्निंग साइन था कि गाड़ियां आप मत लेकर जाओ, फिर भी लेकर गई। अगले दिन वो उस हडसन रिवर में उसका मृत शरीर पाया गया। तो अब ये पूरी स्टोरी जो आपने अभी सुनी, इसमें प्रश्न ये पूछा गया था कि गलती किसकी थी, हु वॉज एट फॉल्ट, उस महिला का पति, वो नाविक, वो जिम इंस्ट्रक्टर, किसकी गलती थी इसमें? पति की। मैं एक बार बैंगलोर में एक सेमिनार ले रहा था, ये जॉय ऑफ स्ट्रेस, तो उसके अंदर मैंने ये स्टोरी प्रेजेंट की थी। तो मैंने पूछा कि किसकी गलती थी, तो एक ने कहा बारिश। सब ठीक चल रहा था, मतलब बारिश नहीं होती उस दिन। तो यहां पर ये स्टोरी में मुद्दा ये है जानने लायक कि हां, वो जो सर्जन सर्जरी कर रहा है, कोई गलत नहीं कर रहा था, तो सर्जरी कर रहा है, लेकिन वो पैसों के लिए जब उसने कहा कि मेरा टाइम मत मांगना, क्योंकि अगर तुम टाइम मांगोगे तो मैं उतने पैसे नहीं कमा, तो वो क्या था, उसका लोभ था। वो एक, उसको लत लग गई थी कि रोज $10,000 तो मुझे वो मीटर उसका करना ही है, $10,000, तो उसका ग्रीड था। यहां पर ये कहा गया है कि ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो जिम इंस्ट्रक्टर के साथ वो महिला जा रही थी, वो क्योंकि उस पति ने इस प्रकार का व्यवहार किया इसलिए वो किसी से स्नेह ढूंढने के लिए वहां पर गई। तो वहां पर भी उसने पैसों का लेन देन हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मानते हैं कि अगर किसी को किसी के साथ स्नेह है तो पैसों का लेन देन उसके बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन जब जरूरत आती है उस समय अगर वो अपने उस नियम में अड़ियल रहे, तो ये हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि उस पैसों का सही उपयोग नहीं है। पैसों का अर्थ ये नहीं कि उन्हें हमें ना फेंक देना है नाली में, गटर में, क्योंकि वो लोभ पैदा करते हैं। नहीं, उसका सही उपयोग भी है। और वैसे ही वो नाविक की भी गलती इसके अंदर बताई गई। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो इसमें पैसों को ठीक से बैलेंस कर नहीं उसका दृष्टिकोण रखा गया, मतलब अटैचमेंट और एवर्जन का एक्सट्रीम्स बताया गया इसके अंदर। जो हस्बैंड था उसके अंदर इंटेंस अटैचमेंट फॉर मनी, और ये जो जिम इंस्ट्रक्टर था इंटेंस एवर्जन फॉर मनी। और भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा है कि राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियस चरण, कि इन दोनों को बैलेंस करते हुए जो इनके ऊपर उठता है ये अटैचमेंट और एवर्जन के, वो व्यक्ति भगवान की सही कृपा प्राप्त करता है। तो यदि हम ग्रीड को लें या लोभ को लें जो कि असंतुष्टि का कारण है, तो 5 पॉइंट फॉर्मूला इस प्रकार से है। रियलाइजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्यूटिलिटी ऑफ मनी, क्योंकि जहां से आजकल लोभ उत्पन्न होता है ये पैसों के वजह से। जैसे हमारे बचपन में ये कहानी हमको थी हमारे टेक्स्ट बुक में, तीन चोर, तो चोरी कर कर जंगल में जाते हैं वो, और वहां पर वो कहते हैं कि अभी पूरे दिन भर इतनी चोरी की है हमने तो भूख लग रही। तो फिर उनमें से एक चोर को भेजते हैं कि जा तू कुछ खरीद के लेके आ खाने के लिए। तो वो जाता है बाजार से कुछ खरीद के लेके आता है। यहां ये जो दो चोर बोलते हैं कि वो आएगा तो उसको हम खत्म कर देते हैं, तो फिर क्या है उसका जो कोटा है वो हम में बांट लेंगे। तो ऐसा इनका प्लान, वो खाना लेके आएगा उसके बाद में उसको मार देंगे। तो जिसके हाथ में बंदूक होती है वो करता क्या है कि जैसे वो आता है तो वो जिसके साथ प्लान बना है उसको भी मारता है, और वो बेचारा जो खाना लेके आया है उसको भी खत्म कर देता है, क्योंकि अब दोनों का कोटा मेरा, सारा सब कुछ मेरा। इसको कहते हैं लोभ। तो सब कुछ उसने अपने आप रख लिया और फिर आराम से बैठ के दोनों मरे पड़े हैं। ये अपना वो भोजन वोजन खाया, भोजन खाने के बाद ये भी मर गया, क्योंकि उसने क्या सोचा उधर वो जहर डाल के लाया था। ये देखिए, इसको कहते हैं द फ्यूटिलिटी ऑफ मनी, कि जब उसको कोई इस धारणा में, ग्रीड या लोभ की धारणा में उसके साथ व्यवहार करता है तो फिर ये उसका हाल होता है। और साथ साथ भगवान ये भी कह रहे हैं रियलाइजिंग, ठीक है मान लीजिए किसी के पास बहुत धन उसने एकत्रित भी कर लिया, लेकिन किसके लिए? ये जो शरीर है ये तो क्षीण होने ही वाला है। जैसे हमने वो एक एग्जाम्पल दिया था कि वो व्यक्ति साउथ से बॉम्बे आया और उसको बटाटा वड़ा इतना अच्छा लगता था बॉम्बे का, तो इतनी मेहनत कर कर वो रेस्टोरेंट्स का मालिक बना, इतने सारे बटाटा वड़ा खा सकता था, लेकिन ऐसी उम्र आ गई उसकी कि उसका लिवर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि वही नहीं खा सकते तू, क्या वही बटाटा वड़ा। तो जब उसके पास पैसे आ गए, वो बोलते हैं ना कि दांत हैं चने नहीं है, चने हैं तो फिर दांत चले गए। तो प्रकृति ऐसी करती है कि जब तक आपके दांत एकदम कोलगेट का मंजन कर करके एकदम सशक्त हैं तब तक चने नहीं देंगे, और जैसे फिर सारे दुनिया भर के चने आपके पास आएंगे लेकिन फिर देखते रहो उनको। तो ये जो शरीर है हमारा उसकी सच्चाई इस प्रकार से बताई गई है। और यदि हमें इस लोभ से छुटकारा पाना है तो एक बहुत महत्वपूर्ण है, कल्टीवेटिंग सेल्फलेस सर्विस, कल्टीवेटिंग। इसलिए एक वो सुंदर अंग्रेजी में कहावत है, यू हैव नेवर लिव्ड योर लाइफ इफ यू हैव नॉट डन समथिंग फॉर समवन नोइंग दैट दैट पर्सन विल नेवर बी एबल टू रीपे यू। सेल्फलेस, जिसे ये मछलियों के विषय में कहा गया है कि वन बेबी फिश वॉज आस्किंग द मदर फिश दैट इन दिस ओशन वी हैव सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिशेज, वी हैव जेली फिश, स्टार फिश, दिस फिश, सो विच काइंड ऑफ फिश लिव्स ऑन लैंड? सेल्फिश। तो मदर ने आंसर दिया, देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ फिश विच लिव्स ऑन लैंड एंड दैट इज सेल्फिश। तो कल्टिवेटिंग सेल्फलेस सर्विस, इसका अर्थ क्या है? सेल्फलेस का अर्थ है कि जो हम केवल अपने आप को शरीर मानते हैं और दूसरों को भी शरीर मानते हैं, केवल उसी के लिए सब कुछ करना। लेकिन सेल्फलेस का अर्थ यह है कि वो जो शारीरिक सेल्फ जिसको हम मानते हैं, उसके परे जाकर उसके आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जो भी हम कार्य करें, और हम अपने स्वयं के आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जो कार्य करें, वो भी है कल्टिवेटिंग सेल्फलेस सर्विस एंड कल्टिवेटिंग सेटिस्फैक्शन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूंजी है हम मनुष्यों की। इसलिए नीति शास्त्र में कहा गया है कि चाहे कोई कितना भी धन अर्जित कर ले, यदि उसने ये धन अर्जित नहीं किया, कौन सा? संतुष्टि का धन अर्जित नहीं किया, तो जैसे महात्मा गांधी ने कहा, द एंटायर प्लैनेट द क्रिएशन विल बी इनसफिशिएंट फॉर अ पर्सन हु इज ग्रीडी। और फाइनली स्पिरिचुअलाइजिंग वन्स डिजायर्स, भगवान यहां पर, और अब आप लोग ये प्रश्न करोगे कि भगवान तो यहां पर कह रहे हैं कि प्रसन्न चित्त रहो और संतुष्ट रहो, और उसके साथ साथ अर्जुन को बोल रहे हैं युद्ध कर जीतो हस्तिनापुर। तो यहां पर जो ये अंतिम पॉइंट है कि हां, हस्तिनापुर जीतो, ये युद्ध जीतो, क्यों? वो राज का कार्यभार संभालो, लेकिन क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवद गीता का संदेश ये नहीं है कि हमें हमारी इच्छाओं को खत्म करना है, हनन करना है। भगवद गीता का सिद्धांत ये है कि कैसे हम हमारी इच्छाओं को भगवान की सेवा में परिणित करें। स्पिरिचुअलाइजिंग दोज डिजायर्स कैन बी द ओनली वे by which we can satisfy that greed within us. तो नीति शास्त्र में ये एक उदाहरण दिया है जिसको अंग्रेजी में हमने ट्रांसलेट किया, the shoe of satisfaction. इस उदाहरण में ये प्रस्तुत किया है कि मान लीजिए किसी को किसी रास्ते पर चलना है और वो रास्ता बहुत कंकड़ से भरा हुआ है, तो एक तरीका है कि उस रास्ते के ऊपर वो कोई कारपेट बिछा दे या रबर बिछा दे पूरे रास्ते के ऊपर। लेकिन नीति शास्त्र कहता है कि दूसरा और आसान तरीका है कि वो रबर के जूते पहन ले, है कि नहीं? दोनों में आसान कौन सा है? रबर के जूते पहनना। तो ये उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यदि इस संसार के जितने सारे धन संपत्ति ऐशो आराम को एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति करने की कोशिश कर रहा है। वो कंकड़ों को, हर एक कंकड़, रास्ते के हर एक कंकड़ को वो कारपेट से ढकने की। कितना बड़ा कारपेट उसको लगेगा, कितने कंकड़ हैं और कितना अथक प्रयास उसको करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन यदि वो अपने अंदर संतुष्टि का धन प्राप्त कर लेता है, सो ही स्टार्ट्स वेयरिंग द शू ऑफ सैटिस्फैक्शन, सो वेर एवर ही गोज द पेबल्स एंड द प्रिक्स ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड कैन नेवर अफेक्ट दैट पर्सन। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दुर्लभ पूंजी या संपत्ति इस भौतिक संसार की है, और वो है संतुष्टि। और भगवान आज के श्लोक में वही अर्जुन को कहे हैं कि भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति के लक्षण क्या है या परिणाम क्या है, कि वो पूर्ण रूपेण सम्यक रूप से तुष्ट रहता है, जिसके वजह से उसका चित्त प्रसन्न रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। और यही तरीका है अर्जुन, केवल ये जो तुम्हारा अभी दुख है, कौन सा दुख, कि मैं अपने सगे संबंधियों का वध कैसे करूं, ये दुख बहुत ही सर्वसाधारण सा दुख है। असली दुख है कि भगवत विस्मृति, और ये जो हमारा चित्त है हर समय इस भौतिक संसार में लालायित रहता है लोभ को संतुष्ट करने के लिए। तो उन सब से ऊपर उठने के लिए प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्य उपजायते, कि ये सभी दुखों का हनन तब होगा जब प्रसन्न चेतसो ही अशु, कि बहुत जल्द ही तुम उस प्रसन्न चित्त को प्राप्त करोगे। कैसे? जब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, और बुद्धि हमारी स्थिर होगी जब तब की जब संतुष्टि हमारे अंदर प्राप्त होगी। और वो संतुष्टि भगवान पिछले श्लोक और आज के श्लोक को कंबाइन करते हुए हमें बताए हैं, राग द्वेष। हालांकि आज का जो श्लोक है प्रभुपाद ने उसका परपोर्ट नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों श्लोक ये आपस में इतने जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रभुपाद ने उसका परपोर्ट नहीं लिखा। लेकिन क्योंकि एक एक शब्द का विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हम उसका कनेक्शन नहीं समझे तो हम नहीं समझ पाएंगे कि भगवान कौन से प्रसाद की बात कर रहे हैं, और वो प्रसाद का परिणाम हमारे जीवन में किस प्रकार से होगा। तो अब अगले श्लोक में, हालांकि ये श्लोक तो है ही, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, सभी श्लोकों का परम श्लोक यही है, जो प्रसन्न चित्त हमें ये दिलाने के लिए और पूर्ण रूप से संतुष्टि दिलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने युग धर्म दिया है। तो जो अगला श्लोक भगवद गीता का हम लेंगे अगले वेडनेसडे को, जिसके अंदर भगवान अब बताएंगे कि जो व्यक्ति ये जो फॉर्मूला भगवान ने दिया है, संतुष्ट होने का और प्रसन्न चित्त होने का फॉर्मूला दिया, जो व्यक्ति इस फॉर्मूला को नहीं फॉलो करता उसका क्या परिणाम होता है। तो अभी तक भगवान ने क्या बताया कि तरीका क्या है भगवत कृपा प्राप्त करने का, भगवत कृपा प्राप्त करने का परिणाम क्या है आज के श्लोक में, और अगले वेडनेसडे का श्लोक है कि भगवत कृपा जिसको प्राप्त नहीं हुई है, जो असंतुष्ट है, जो अप्रसन्न चित्त है, वो उसका परिणाम क्या होता है, उसके क्या लक्षण है, ये है अगले श्लोक का अनुवाद। हरे कृष्णा।